काश ये हिसाब किताब न होते। बहुत समय पहले किसी राज्य में एक राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि मुझे कोई एक ऐसा सूत्र चाहिए कि जिसमें जीवन की हर समस्या का हल हो, और वो मुझे बहुत छोटा सा चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े शास्त्र, क्योंकि इतना सब पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कोई धर्म का, ऐसा कोई जीवन का, ऐसा कोई बहुमूल्य सूत्र जो जीवन की हर परिस्थिति में, हर दुख में, हर दर्द में, हर समस्या में, हर विघ्न में, हर चीज में वो काम आ जाए। तो वो मंत्रियों के पास तो केवल शास्त्र होते हैं और कुछ नहीं, बहुत ढूंढते हैं नहीं मिलता। सुनते हैं किसी एक सूफी संत के विषय में और उनके पास जाते हैं और कहते हैं हमारे राजा ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या आपके पास ऐसा कुछ है? तो वो सूफी संत कहता है मेरे पास एक अंगूठी है और इस अंगूठी के अंदर एक कागज है जिस पे वो सूत्र लिखा हुआ है, और वो सूत्र मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं है कभी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बताकर दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में ये काम आएगा, पर ऐसी कोई परिस्थिति आज तक मेरे जीवन में आई नहीं, इसलिए वो अनपढ़ा ही रहा हुआ है। पर एक काम कर सकते हो आप, ये राजा को दे दो अंगूठी, परंतु एक शर्त है कि इसको जब सब तरफ से निरुपाय हो जाए, कोई भी सहारा आधार न दिखे, तभी इसे पढ़ना, इस अंगूठी के अंदर जो लिखा है, अन्यथा नहीं। तो राजा तक अंगूठी पहुंचती है। कई बार राजा को लगता है इसे खोल के देखूं क्या है, पर फिर उस सूफी संत की बात याद आती है कि अगर तुमने ऐसे ही देख लिया तो वो काम नहीं आएगी। बहुत समय बीत जाता है और एक बार उस राज्य पर किसी दूसरे राजा का आक्रमण हो जाता है और ये राजा हार जाता है। उसके सारे सिपाही, उसका सारा परिवार बिखर जाता है यहां वहां। कैसे तो अपने बच्ची और अपने बीबी को लेकर निकलता है, पर वो भी रास्ते में मारे जाते हैं। कुछ सेना की टुकड़ी होती है, उनको लेकर भागता है, परंतु वो भी बिखर जाते हैं और आखिर में अकेला ही बचता है, और वो भाग रहा है घोड़े पर, और पीछे शत्रु की सेना है, उनके घोड़ों की टाप सुनाई दे रही है, और वो भाग रहा है भाग रहा है। और अचानक वो एक जगह पहुंचता है कि सामने तो अब खाई है, कोई मार्ग नहीं, पीछे सैनिक, सामने मृत्यु, पीछे भी मृत्यु, सामने भी मृत्यु। वो सोचता है अब क्या करूं, और अचानक उसको याद आता है वो अंगूठी, और उस अंगूठी को वो खोलता है और उसमें एक चीज लिखी होती है। कहानी पश्चिम देश की है, उस पे लिखा होता है दिस टू विल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जैसे ही वो ये देखता है, वो ये भूल ही जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, वो ये भूल ही जाता है कि सामने खाई है, और एकदम से निश्चिंत हो जाता है। ये जो समय आया है ये भी गुजर जाएगा, कोई भी समय कभी भी परमानेंट नहीं रहता। और जैसे ही वो पढ़ता है, खो जाता है और वहीं रुक जाता है, और थोड़े देर के बाद वो सैनिक जो पीछा कर रहे होते उनकी आवाजें, वो घोड़ों की टाप सुनना बंद हो जाती है, वो सैनिक शायद कहीं और मुड़ चले जाते हैं, और फिर ये राजा लौटता है और फिर सैन्य इकट्ठा करता है, एकत्र करता है, फिर से उसी राज्य पर आक्रमण करके फिर विजय को प्राप्त करता है, और फिर उसको अपना राज्य फिर मिल जाता है। चारों ओर जय जयकार होती है, हाथी पर बिठाया जाता है और वो अपने राज्य पर में घूमने निकलता है विजय पताका लेकर, और सभी प्रजा उसकी जय जयकार करते हैं। और उस वक्त वो फिर से वो अंगूठी खोलता है और फिर से पढ़ता है दिस टू विल पास, ये भी गुजर जाएगा। ये जो महिमा हो रही है, ये जो जय जयकार हो रही है, ये जो इतना स्वागत और सत्कार हो रहा है, ये भी परमानेंट नहीं रहेगा। इस संसार में जो भी परिस्थितियां है, जो भी समस्याएं, जो भी विघ्न और जीवन में जो कुछ भी है, कुछ भी परमानेंट सदाकाल के लिए चिरकाल के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। एक जैन स्टूडेंट अपने मास्टर के पास जाता है, अपने गुरु के पास, और कहता है कि क्या इस आश्रम में इतने मच्छर है, मैं बिल्कुल योग नहीं कर सकता। योग अर्थात मेडिटेशन, उनका वो जो जिसको जैन मेडिटेशन कहते हैं। कहता है यहां मेडिटेशन करने जाता हूं, मच्छर तो काटते ही है, घुटने दर्द होते हैं, पीठ दर्द होती है, ये होता है, वो होता है। तो वो गुरु कहते हैं चिंता मत करो, थोड़ी दिन के बाद ये भी, इससे तुम पार कर जाओगे, ये अवस्था नहीं रहेगी, इससे तुम निकल जाओगे। कुछ दिनों के बाद वो फिर आता है, वो कहता है कि अभी बहुत अच्छा लगने लगा है, अभी एकदम अच्छा लगता है, जब योग करता हूं, मेडिटेशन करता हूं, तो एकदम पावरफुल फील करता है, फील होता है। तो गुरु कहते हैं चिंता मत करो, ये भी कुछ दिन चलेगा, ये भी ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे बहुत गहरे राज है, जो शायद हमें नहीं पता क्यों अचानक कोई आता है और क्यों अचानक जीवन से चला जाता है, क्यों अचानक किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है और जन्म के दूसरे दिन पता चलता है बच्चे के हार्ट में छेद है, डॉक्टर कहते हैं तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, 5 लाख का खर्चा है, माँ बाप गरीब है, सब तरफ से कर्जा लेते हैं, इधर उधर से मांगते हैं, पैसे जमा करते हैं और बहुत मुश्किल से सब कुछ करके दांव पर लगाकर बच्चे का ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन होता है, उसके 2 दिन के बाद बच्चा मर जाता है। अब बताओ बच्चा किस लिए आया था? हुँ? 5,000 ले लिए थे ना उससे 5 लाख सॉरी, तो लेने आएगा कि नहीं, कि ऐसे ही छोड़ देगा? तो जब भी घर में बच्चा आए तो कितना अच्छा लगता है पालने में, पर उसके हाथ में तलवार है, उसको भी देख लेना किस लिए आया है, तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर आया है, हिसाब चुक तो करने, एक भी नहीं छोड़ेगा। जो जो आए हैं हमारे इर्द गिर्द, पति पत्नी बच्चे, बॉस साथी फ्रेंड्स जूनियर्स इंचार्ज, फेसबुक में व्हाट्सएप के ग्रुप में जो भी है इर्द गिर्द, कौन पहुंचे हैं सब? जन्म जन्म के शत्रु किस लिए आए? कुछ देने को और कुछ लेने को, छोड़ेंगे नहीं। पर ये याद रखना है, नए बॉन्डेज क्रिएट नहीं करना है, अभी फ्रेश बॉन्डेजेस जो है उनको चुप्त कर देना है। कुछ नया क्रिएट करने गए, उसने ऐसा किया और हमने ऐसा किया और टक्कर, फ्रेश बॉन्डेज सहन कर लेना। महात्मा गांधी के जीवन में 2 बातों का वर्णन है। एक तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे, ट्रेन में बैठे थे, फर्स्ट क्लास की टिकट थी, टीसी आता है और कहता है कॉमन बोगी में जाओ, वो कहता है नहीं जाऊंगा, और उसको सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन पर धक्के देकर निकाल देते हैं। वो सहन नहीं कर पाता है युवक, क्रांति हो जाती है। वही व्यक्ति 1940s में, महात्मा गांधी एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और कुछ लोग हैं 2 किसान उस ट्रेन में, यह अनुभव जगदीश भाई ने अपने क्लास में कहा है। ट्रेन में बैठे हुए हैं, 2 किसान हैं, तो महात्मा गांधी सो गए और उनकी लात थोड़ी सी किसान को लग गई, तो एक किसान इतना गुस्सा किया कि समझता नहीं कि तुम कौन हो, कैसे सो गए, ठीक से सो जा। तो अपने पैरों को एकदम से नजदीक ले लेते छाती के पास और सो जाते हैं। पर थोड़ी देर के बाद नींद में क्या पता चलता है, एक लात दूसरे किसान को लगती है, तो वो इतना चिल्लाता है, उसके बाद गांधी जी बैठ जाते हैं कि ना तो मैं सोऊंगा और ना इनको लात लगेगी, और पूरी रात वो बैठकर ही गुजारते हैं। सुबह होती है और जहां ट्रेन पहुंचती है वहां हजारों लोग उनको स्वागत के लिए, अब ये दो किसान को तो ये पता ही नहीं है कौन है, तो जैसे वो दो किसान सामने होते हैं महात्मा गांधी पीछे होते हैं गाड़ी के डिब्बे में, और लोग हार लेकर आते हैं कहां कहां है महात्मा गांधी, तो दो किसान कहते हैं यहां कोई नहीं है महात्मा, इतना जाओ यहां से। तो जब वो नीचे उतरते तो सब देखते हैं तो उनको इतना बुरा लगता है कि हमने इनके साथ क्या व्यवहार किया। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, ये वही व्यक्ति था जो सहन नहीं कर पाता कि जब उसको एक बार कहा गया था कि उस कंपार्टमेंट में जाओ, और यहां पर ये उनकी आंतरिक स्पिरिचुअल ग्रोथ है। एक जगह विरोध किया था पर अभी सहन किया, चुप बैठे, रात बैठकर गुजारी ताकि इन दोनों को वापस से लात ना लगे। ये भी नहीं कहा तुमको पता है मैं कौन हूं, तुमको पता है मेरे स्वागत के लिए कितने लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कहा। He was calm and silent। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, छोटी से छोटी बात या बड़ी से बड़ी बात, हमारे ही जीवन के कुछ कार्मिक अकाउंट्स हैं। वो क्यों दोनों किसानों ने ऐसा कहा, जरूर कुछ तो हिसाब होगा पुराना। अगर वो भी विरोध करते या कुछ करते तो नया बंधन बनता, अब चुप रहे और सेटल कर दिया अकाउंट को। तो ये जो हिसाब किताब है इनके बहुत सारे फायदे हैं, आज हम थोड़ी सी उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे 7-8 फायदे। सबसे पहले तो ये बताओ, हिसाब किताब आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। तो क्या आह्वान करेंगे? वो बिना आह्वान किए अपने आप ही आते हैं, ठीक है। उनको बोलने की जरूरत ही नहीं, वो आते ही रहते हैं। सबसे पहला, हिसाब किताब जब आते हैं और उनको चुप तो किया जाता है तो बाद में हम हल्का हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। इसलिए ये उनकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, यूटिलिटेरियन है बहुत, कि आए चुप तो हुए और हम हल्के हो गए। एक दूसरा, हिसाब किताब हमें शक्तिशाली बनाने आते हैं। हम वो व्यक्ति नहीं रहते जो पहले थे, जैसे ये बीच में यहां पर विघ्न समस्या परिस्थिति है, हिसाब किताब हम यहां हैं, यहां हम जो थे और इसको पार करने के बाद हम हैं, ये अलग है। द रिजल्ट इज ग्रोथ, परिणाम है विकास। इस परिस्थिति से गुजरने के बाद हम वो नहीं रहे जो पहले थे, अभी हम परिपक्व बन गए हैं। जैसे एक परिस्थिति हम आपको दे रहे, आप पर आरोप लगा दिया जाए, झूठा आरोप, जो आपने किया ही नहीं अपराध, और कहा जाए कि तुमने ये चोरी की है, ये वस्तु तुमने चुराई है, यज्ञ की ये वस्तु तुमने चुराई, क्या करेंगे? लड़ेंगे, झगड़ेंगे, जिद करेंगे, सिद्ध करेंगे, क्या करेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम पर आरोप लगाने की, ऐसा कहेंगे? तुमको भी देख लूंगा, क्या कहेंगे? ये एक परिस्थिति है, इसको फेस करने के बहुत सारे ऑप्शंस है, लड़ना, झगड़ना, जिद करना, लड़ाई करना, उसी पर उल्टे आरोप लगा देना कि तुमने तो इससे ज्यादा किया है, मेरा तो कुछ भी नहीं। अपनी सत्य बात को सहज भाव से कह देना और चुप रहना, यह विधि है। जिद करने की कोशिश नहीं करना, सिद्ध करने की कोशिश नहीं करना, सत्य स्वयं सिद्ध है। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम चुप रहे, सहज भाव से सत्य बोल देना और चुप रहना। एक साधु गांव में प्रवेश करता है, राजा के सिपाही आते हैं, पकड़ के कारागार में डाल देते हैं, तुमने चोरी की है राज महल की, कुछ भी नहीं कहता है, चुप। एक हफ्ते तक बंद रहता है, एक हफ्ते के बाद असली चोर पकड़ा जाता है, साधु को कहा जाता है जाओ तुम चोर नहीं हो, कुछ नहीं, चुप। जाने लगता है, राजा को आश्चर्य होता है इसने कुछ भी नहीं कहा, जब पकड़ा था तब भी कुछ नहीं कहा, जब छोड़ रहा तब भी कुछ नहीं कहता है। तो वो पूछता है, हे साधु, हे सन्यासी, हे योगी, मुझे बताओ, कुछ तो कहो। वो कहता है, कहने का कुछ है ही नहीं, जो कुछ हुआ वो मेरे इस जन्म का नहीं, किसी और जन्म का पाप था। इस जन्म में तो मुझे पता है मैंने कुछ किया ही नहीं है, जो हुआ वो किसी और जन्म का पाप था, जो हमारे साथ हो रहा है वो किसी और जन्म की बातें हैं, कुछ 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 इस जन्म की है, कुछ कुछ और जन्म की, जो बिना कारण अकारण हो रही है, हमारा कोई दोष नहीं और फिर भी हमारे ऊपर कोई दोष लगाता है आकर, और ये होगा, ठीक है। तो किस लिए आते हैं हिसाब किताब? हमें शक्तिशाली बनाने के लिए। तीसरा, हिसाब किताब आते हैं हमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट देने, पेपर समझना उसको, पेपर है, पेपर में फेल नहीं हो जाने हैं। इतना बड़ा पेपर आ गया, किसी ने हम पर पवित्रता का ही कलंक लगा दिया, पवित्रता के ऊपर हिल जाता है व्यक्ति, सिद्ध सिद्ध करने लगता है, कोई कह दे कि तुम्हारा तो कुछ चल रहा है चक्कर, हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। पास विथ ऑनर होना है, पेपर आया है पास करना है उसको, सबको पेपर आया है, ब्रह्मा बाबा को सबसे ज्यादा पेपर आया है, विरोध बहुत कुछ सब कुछ। अगला, हिसाब किताब चुक तो करने के बाद खुशी रहती है एक कि पार हो गया, अच्छा है ना, आ गया। आज कहा ना, एक्सीडेंट है उसमें भी कल्याण है, कम नुकसान हुआ, ज्यादा नुकसान होना था। और हिसाब किताब, अगला पॉइंट, हमारे पास आ रहे हैं विदाई लेने के लिए, और कितने समय के बाद आ रहे हैं, 5000 साल के बाद, तो उनको तो अच्छे से स्वागत करना चाहिए आओ, क्योंकि आ किस लिए रहे, हमेशा के लिए विदाई लेने के लिए। अच्छा है बीमारी आ गई, अच्छा ही है, ऐसी रेयर बीमारी हो गई, चुप तो हो गया। और जो हिसाब है वो बहुत सूक्ष्म है, कभी कभी अगम्य है, बुद्धि को समझ में नहीं आती है क्यों हुआ ऐसा, पर हुआ है, स्वीकार कर लेना। अगला है, और क्या करते हैं आप बताएंगे, हिसाब हमें सत्य जो है वो बोलना है जरूर, परंतु हमारा टोन जो है बोलने का, 99% ऑफ द क्वारल फाइट्स आर बिकॉज ऑफ टोन ऑफ द वॉइस। क्या बोल रहे हैं वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस टोन में वो कहा जा रहा है। असत्य भी है, सत्य भी है, यदि अहंकार के टोन में कहा जाए तो वो गलत उठाया जाता है। जो भी परिस्थिति आपने बताई उसमें सत्य हमको बोलना है पर डिटैच, सत्य हमको बोलना है, जिद सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, सत्य बोल के चुप रह जाना है। वहां पे मौन 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 ही उत्तर है, क्योंकि जो व्यक्ति क्रोध में है, ठीक है, वो इतना क्रोध में है, इतना क्रोध में है, और हम एकदम शांत है, परंतु उसके समीप जाते उसका क्रोध हम में ट्रांसफर हो जाता है थोड़ा सा, इसके लिए हम भी थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं, हम भी थोड़ा सा क्रोध कर लेते हैं उसके साथ। हमारा वॉइस जो अमृत वेले, ये सोचना हमेशा कि ये जो परिस्थिति आई है, अगर यही परिस्थिति आप अमृत वेला मधुबन में है उसी समय ये हो रहा है, तो आप क्या उत्तर देते, कैसे रिएक्ट करते, उसी रिएक्शन को लाना है। आप बाबा के कमरे में हैं, अभी अभी आपने शक्तिशाली योग किया, 4:15 हुए हैं, आप उससे बाहर आए और ये चालू है, क्या करते, क्या टोन होता, कैसी रिएक्शन होती, वो जो रिएक्शन, वो जो टोन हमारी होती उस समय वो कुछ और होती, यहां जो है वैसी नहीं होती। कभी भी ऐसी परिस्थिति आई उसको पोस्टपोन कर देना है, एंगर 12 घंटे का टाइम दे देना अपने आप को कि इसको रिएक्ट, आई विल रिएक्ट आफ्टर 12 आवर्स। अभी अभी हमने लास्ट संडे ही पांडव भवन में जो क्लास हुई थी उसमें एक बात कही थी डेल कार्नेगी के विषय में, कि उन्होंने एक बार एक लेक्चर दिया, अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध लेखक, उन्होंने एक लेक्चर दिया अब्राहम लिंकन के विषय में। लेक्चर देने के बाद रेडियो पर लेक्चर हुआ, एक महिला ने खत लिखा कि आपने ये जो अब्राहम लिंकन के बारे में कहा है ये गलत कहा है, आपको पहले रिसर्च करना चाहिए था, सब झूठ झूठ कहा, और उसने इतनी बहुत ही जहरीला लेटर लिखा, एक खतरनाक, और आपको अभी सबके सामने पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। तो डेल कार्नेगी ने जैसे वो लेटर पढ़ा उसने वो उठाया अपना एक कलम और उतना ही खतरनाक लेटर उत्तर लिखा उसने, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मुझे पूछती हो, मैं, क्योंकि उन्होंने खुद अब्राहम लिंकन के विषय में कुछ किताब भी लिखी है अननोन लिंकन, और उसको ये कह रही है कि तुमने रिसर्च कम पढ़ा, तुमने पब्लिकली सारी पब्लिक के सामने माफी मांगो, ऐसा है। उन्होंने बहुत खतरनाक लेटर लिखा, पर रात हो गई थी इसलिए लेटर को टेबल पर रख दिया, सोचा कल सुबह पोस्ट करूंगा। दूसरे दिन सुबह हुई तो सोचा पोस्ट करने से पहले एक बार पढ़ तो लूं, और जब पढ़ने बैठे तो लगा ये थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया मैंने, तो थोड़ा कम लिखना चाहिए, तो इतना भी क्या है। तो और फिर सोच विचार आया कि 12 घंटे में इतना फर्क पड़ गया तो क्यों ना मैं 12 घंटा और रुक जाऊं, शाम को लिखूंगा एक नया लेटर। तो 12 घंटा और रुक जाते हैं और शाम को एक लेटर लिखते हैं, सोचते अब पोस्ट करता हूं। फिर मन में संकल्प आता है कि नहीं, लेट मी सी एन एक्सपेरिमेंट, 7 दिन तक सुबह और शाम रोज लेटर लिखते हैं, और 7वें दिन एक खत लिखते हैं उस महिला को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं बहुत आभारी हूं, आपने ये जो मेरी गलती बताई, मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब भी मैं कोई गलती करूं तो आप मुझे तुरंत बताना ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं, सुधार कर सकूं, मैं बहुत बहुत आपका अनुग्रहित हूं। ये लास्ट लेटर पहला था बहुत खतरनाक, और फिर वो लेटर जैसे ही उस महिला को मिलता है, वो महिला मिलने आती है और वो लिखता है कि एक लंबी मैत्री, लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप हो जाती है उसके साथ, उस महिला के साथ। अगर वो पहला लेटर भेज दिया होता तो क्या होता, दुश्मन, खतरनाक दुश्मन खड़ा हो जाता। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आई उस टाइम पे माइंड को टाइम चाहिए, कभी कभी पोस्टपोन कर देना है, वहां से चले जाना है, कहने दो, मन बहुत सारी चीजें कहेगा, मन कहेगा कायरता है, हम भी कोई कम है क्या, हम नहीं कर सकते क्या, उसने ये कर दिया, कायरता नहीं है, क्योंकि उस समय हम परवश होने की संभावना बहुत है। यही परिस्थिति अगर अमृत वेले आती है तो हमारी रिएक्शन कुछ और होती, क्योंकि हम उस समय थोड़ा स्ट्रांग है, पर दिनचर्या में, दिन के बीच में या रात में वो आ रही है तो हम हिल रहे हैं वहां पर। इसलिए एंगर मैनेजमेंट में बताते ना, गिनती करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, 100 तक गिनती करो, क्रोध आ गया तो। पर कभी कभी ये टेक्निक भी फेल हो जाती है। उसका भी एक दूसरा उदाहरण है कि एक छोटा बच्चा होता है, इतना शरारती होता है, आसपास के पड़ोस के जितने बच्चे पकड़ पकड़ के रोज पीटता है सबको। तो उसके पिताजी उसको एंगर मैनेजमेंट टेक्निक सुनाते हैं, सिखाते हैं। उसको कहते हैं कि जब भी तुम्हें बेटा क्रोध आए और किसी को पीटने की इच्छा हो ना, पहले तुम 1 से लेकर 100 तक गिनती करना, ताकि वो क्रोध शांत हो जाए। एक दिन पिताजी देखते हैं खिड़की से कि उनका बेटा दूसरे एक बच्चे की छाती पर बैठा हुआ है और पकड़े हुए है। तो वो कहता है, अरे मैंने तुमको कहा था ना 100 तक गिनती करो। तो वो कहता है, वही तो कर रहा हूं, 1 2 3 4। तो वो कहता है, इसको मैंने इसलिए पकड़ के रखा है, जैसे ही 100 तक की गिनती हो जाएगी, नहीं तो ये भाग जाएगा, इसको बाद में ठिकाने लगाऊंगा। उल्टा हो गया मैनेजमेंट टेक्निक। तो पोस्टपोन द डिसीजन, पोस्टपोन द एंगर, वेट फॉर वन अमृत वेला, एक अमृत वेला गुजर जाने दो। जैसे वो डेल कार्नेगी ने 6-7 दिन लगाए और 7 दिन के बाद उत्तर बदल गया, वैसा ही हमारे जीवन में इमरजेंसी सिचुएशन आती है। कोई कहता है कि क्या करोगे, उसको कहना कि मैं कल सुबह बताता हूं, आई विल टेल टुमारो मॉर्निंग, ताकि हम अमृत वेला बाबा से थोड़ा जोड़ ले, कनेक्शन शक्तिशाली हो जाए और फिर उसको उत्तर दे, तो वो राइट होगा। तो कहां थे हम, हिसाब किताब पर। कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ जीवन के ऐसे प्रश्न हैं कि जिसका उत्तर हमें खुद ही अमृत वेला पता चलेगा, कोई दूसरा हमारे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। ये फाइनल उत्तर है, क्योंकि ऑल आंसर्स आर हिडन इन द सबकॉन्शियस माइंड, हमारे ही अवचेतन में उत्तर छिपा है, दूसरा कैसा देगा उत्तर। ही फिजिशियन हील थाय सेल्फ, हमारी बीमारी है हम ही ठीक कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रश्न जीवन के ऐसे है, खुद मन को इतना शांत कर दो कि वो उत्तर वहां स्वतः आएगा। तो हिसाब किताब किस लिए आते हैं, जाने के लिए, विदाई लेने के लिए। इसके लिए कंप्लेंट नहीं करना उसके विषय में। और हिसाब किताब क्यों आते हैं, हिसाब किताब से फायदे, शक्तियों को परखने के लिए, ये देखने के लिए कितना पानी में हो, बहुत मुरलियां सुन ली, बहुत क्लासेस सुन ली, बहुत बार मधुबन चले गए, बहुत बाबा से मिलन मना लिया, अब परिस्थितियां परखने आती है कि कितना प्रैक्टिकल में अप्लाई कर सकते हो। दूसरों को तो बहुत सुनाते थे, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, अभी घर का कोई चला गया शरीर छोड़ के, तो कहां गया ज्ञान, आंसू रुक ही नहीं रहे। कितनों को कोर्स कराया आत्मा की अमरता का, और घर में कोई चला गया तो दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, कहां गया आत्मा और कहां गया परमात्मा। ये सारी परिस्थितियां, ये सारे हिसाब किताब आएंगे। दूसरा, हमारे पास वास्तव में एक टॉर्च लेकर आता है हर व्यक्ति, और वो टॉर्च हमारे मन के अंधकार में किसी कोने को प्रकाशित करता है। वो टॉर्च लेकर आता है और प्रकाश गिरता है हमारे मन में, और वहां से क्रोध उठता है, हमें यह पता चलता है अब भी क्रोध है, निमित्त वो व्यक्ति बना जो कि एक टॉर्च लेकर आ रहा है हमारे पास। वो नहीं आता तो हम तो सोचते थे मैं तो क्रोध मुक्त आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शांति कुंड, शांति की किरणें फैला रहा हूं। हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे भाई बहने सब ज्ञान में चलते हैं, तो बहुत पुराने हैं, अच्छे अनुभव सुनाते हैं। पांडव भवन जाते हैं, अमृत वेला करते हैं, फिर क्लास करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, पावरफुल स्थिति, मैं फरिश्ता हूं। और जैसे ही हॉस्पिटल में आ गए, आईसीयू में चले गए, और पता चला लेबर आया ही नहीं है, जिसने साफ नहीं किया, क्यों नहीं आया, एक स्टाफ है जिसने बिना पूछे छुट्टी ले ली और आया ही नहीं जो कि उसकी ड्यूटी थी, तो फरिश्ता विरिश्ता सब एक तरफ। फोन लगाओ उसको, अभी फोन लगाओ। कैसे चला गया बिना पूछे। तो संघर्ष संघर्ष संघर्ष, और फिर 5 बजते हैं, ड्यूटी पूरी होती है, मैं फरिश्ता हूं। पांडव भवन में योग, मैं फरिश्ता। रिश्ता सब गया, 9 to 5 छुट्टी, 9 से पहले फरिश्ता, 9 के बाद शाम को 5 के बाद फरिश्ता, बीच में तलवार लेकर लड़ाई, परिस्थिति और हिसाब किताब आदमी ये परखने की हम कितने पानी में है, कितना प्रैक्टिकल में उतारा है, कितना इस ज्ञान को जीवन में अंदर धारण किया है। तो ये कुछ फायदे हैं, उसके कुछ नुकसान भी है। तो परिस्थितियां जब आती है, हिसाब किताब ये होने नहीं चाहिए। वास्तव में हिसाब किताब हमारी मनोदशा पर स्थित है। हमारी मनोदशा यदि शक्तिशाली है तो हिसाब किताब में फायदा है, मनोदशा यदि कमजोर है, मन की दशा, तो हिसाब किताब में नुकसान ही है। क्योंकि हिसाब किताब आते ही पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, ना अमृत वेला होता है, ना कुछ होता है, कुछ नहीं, ना मुरली में ध्यान लगता है, सब खत्म। पर हाँ, शक्तिशाली यदि स्थिति है तो उसमें से हम फायदा ढूंढ लेते हैं। इसके लिए निरंतर, चाहे हिसाब किताब हो या न हो, इस तरह से बीच बीच में भटिया, इस तरह से बीच बीच में ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन हमारा होता रहे, ज्ञान से स्वयं को हम परिपक्व बनाते रहे। क्योंकि परिस्थितियां किसी भी समय आ जाएगी। अभी यहां आप बैठे और घर में उधर परिस्थिति आ चुकी है, पहुंचते ही शॉक। जैसे एक बहन बीच में हॉस्पिटल में आए थे, मधुबन में, बहुत उमंग, इतना नशा, इतना झूम रही है जैसे। तो फिर सेवा पूरी हुई एक 15-20 दिन, और फिर जब घर गई और उसका पति उसको लेने आया था स्टेशन पे, वहीं से झगड़ा चालू हो गया, वहीं से। और ये अभी तक एकदम रूहानी नारायणी नशा में, और वहां जाते ही जैसे ही पति ने बोला, इतना दिन क्या कर रही थी, क्या कर रहा, किसने कहा था जाने के लिए, मुझे पहले ही पता था तुम ऐसे करोगी वैसे करो, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख का नुकसान हो रहा है। पहले क्योंकि वो नौकरी करती थी, और जब से इधर आगे नौकरी छोड़ दी तो वो हमेशा उसको याद दिलाता है कि तुम्हारी वजह से मेरा 1 लाख का नुकसान है। तो केवल परिस्थिति अनुसार नहीं, जब परिस्थिति नहीं है तब अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। वर्स्ट आ सकता है, क्या करेंगे, कितने अचल रहेंगे, आज सब है, सारा पैसा है, कल कुछ नहीं रहेगा, आज सारे अपने लग रहे, कल कोई नहीं रहेगा, आज सारे जिंदा है, कल सब मर जाएंगे, फिर भी अचल रहेंगे। इसलिए सारी हिसाब किताब का आधार मन की स्थिति है। इसके लिए मन को शक्तिशाली, पावरफुल स्थिति में स्थित करना है। अच्छा, ओम शांति।